कुंती महारानी अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं। जीवन में पहली बार श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। आप जरा विचार कीजिए, किसी दिन वसुदेव जी प्रणाम करने लगे भगवान को, या देवकी प्रणाम करे, जसोदा जी करे, नंद बाबा, तो कितनी उठपटांग बात। परंतु भगवान का ऐश्वर्य तो नित्य है ही, वो कभी कभी अधिक प्रकट होता है तो परिकरों में, द्वारका के परिकरों में भगवान के प्रति ईश्वर बुद्धि हो ही जाती है। तो प्रणाम करने लगे। कुंती वाच, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम। त्वा का अर्थ त्वाम, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। भगवान तो चकित हो गए, ननु कनिष्ठम मान कथम नमस्करोसि। भगवान ने कहा कि बुआ जी, मैं तो कनिष्ठ हूं, उम्र में और संबंध में भी मैं आपसे छोटा हूं। मैं आपके पुत्र जैसा हूँ, भाई का पुत्र हूँ तो पुत्र ही हुआ, और उम्र में भी छोटा हूँ, आप मुझको क्यों प्रणाम कर रही हैं। श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं, ननो कनिष्ठम मान कथम नमस्करो से, मुझ छोटे को आप क्यों प्रणाम कर रही हैं। भगवान लज्जित हो रहे थे रथ पर बैठकर। तो कुंती महारानी कहते हैं, नहीं कृष्ण, तुम केवल मेरे भाई के पुत्र ही नहीं हो, तुम आदि पुरुष हो। आदि पुरुष तो नारायण है, विष्णु है, भगवान जिन्होंने सबको जन्म दिया है, सबको जो पोष रहे हैं, सबको संयम में रखते हैं, जो ब्रह्मा जी को भी जन्म दिए, शिव जी को जन्म दिए, सब देवताओं को, वो है आदि पुरुष, पहला व्यक्ति। आदि पुरुष का अर्थ पहला नहीं होता, आदि का अर्थ होता है अनादि, जिसके कोई शुरुआत नहीं है, प्रारंभ नहीं है, और उसी से सबका जन्म हुआ है, उसको आदि पुरुष कहते हैं। पर प्रकट लीला में तो भगवान वसुदेव जी से जन्म लिए हैं। तो प्रश्न हो सकता है, क्या वसुदेव जी आदि पुरुष हैं जिनसे कृष्ण जन्म लिए? नहीं, वास्तविक बात यह है कि चाहे वसुदेव जी अथवा नंद महाराज या जसोदा या देवकी कोई भी हो, इन सबके कारण कृष्ण है, कृष्ण से ही सबका जन्म हुआ है। जब ब्रह्मा जी का जन्म भगवान से हुआ है तो वसुदेव जी आदि का तो कहना ही क्या। फिर भी अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण की यही मान्यता रहती है कि ये मेरे पिता हैं। उनके वात्सल्यमय भक्ति से वे प्रभावित रहते हैं, स्नेह रहता है वसुदेव जी का। आपने पढ़ा होगा भागवत में कि ब्रज से जब कृष्ण मथुरा गए तो वसुदेव जी को ये चिंता हुई कि मेरा बेटा पढ़ा नहीं, ये गाय बकरी चराता रहा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, तो तुरंत उज्जैन भेज दिए पढ़ने के लिए। ये पिता का वात्सल्य देते हैं, जैसे माता पिता व्यग्र रहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, अच्छा बने, भविष्य में इसे कोई दिक्कत ना हो, तो वसुदेव जी के हृदय में वात्सल्य था, तुरंत उज्जैन भेज दिए पढ़ने के लिए। तो इस तरह से योगक्षेम की चिंता कहते हैं इसको। कुंती हमेशा स्नेह करती थी भगवान के प्रति, सब तरह से मानती थी, लेकिन आज वो प्रणाम कर रही थी। तो प्रणाम करने पर जब भगवान ने ऑब्जेक्शन किया तो कहती है, नहीं नहीं, अगर मान लीजिए कुंती कहे कि, यदि भगवान कहे कि मुझ भतीजे को क्यों प्रणाम कर रही हो, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो, इस प्रकार की बात क्यों करने लगी, क्या बुआ पागल हो गई है क्या, आज कुछ हो गया क्या, हमको क्यों प्रणाम कर रही है। तो कहती है कि श्री कृष्ण, तुम केवल मेरे भाई के पुत्र ही नहीं हो, तुम आदि पुरुष हो। तो अनादि काल से ही भगवान अपने नित्य सिद्ध परिकरों में कुछ भक्तों में वात्सल्य भाव भरे हैं और उन्हीं को अपना पिता मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई कहे कि किसी दिन अगर भगवान के मन में आ जाए कि मैं भगवान हूं, किसी का बेटा नहीं हूं, तब क्या होगा? भगवान की स्वरूप शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं या चीज शक्ति, वही भगवान को इस भावना में बांध करके रखी है कि मैं पुत्र हूं वसुदेव जी का। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि ये भावना भगवान की होगी कि मैं पुत्र नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं और मैं क्यों किसी को प्रणाम करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे वसुदेव जी के पुत्र ही हैं और रहेंगे, भले वे आदि पुरुष हैं, आदि आद्यम पुरुष, आदि पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है पूर्ण। पुरुष शब्द के दो मुख्य अर्थ है, एक तो अर्थ है जो पुरी में शयन करते हैं, वाला अर्थ है जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, वो है पुरुष, सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, इसी से उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। तस्मिन् लोके वेद च प्रथितः पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष पुरुष है। उत्तम पुरुष का अर्थ है सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक सुंदर, विद्वान, और इसके साथ यह भी कि जो मरण और जन्म से शून्य है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरण नहीं हो सकता है, इसलिए भी उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। तो ऐसे जो आदि पुरुष हैं वे किसी को प्रणाम करें तो ये अपराध की बात है ना, अगर जो प्रणाम स्वीकार कराता है तो अपराध कर रहा है। कुंती महारानी कहते हैं कि आप आदि पुरुष हैं, कैसे कैसे आप हमको आदि पुरुष कह रही हो? तो कुंती महारानी कहते हैं प्रकृति परम, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं और ईश्वर प्रकृति के नियंता भी हैं, आपका कुछ भी प्राकृत नहीं है, मेटेरियल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह शरीर, उनका वस्त्र, उनकी द्वारिका नगरी या उनसे संबंधित कोई चीज प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है। इस संसार में हम लोगों का जो भी है वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, हमारा देह, हमारा मन, बुद्धि और ये सब सामान, खाने पीने का, कपड़ा, जूता, किताब, सब कुछ प्राकृत है, जड़ प्रकृति का रचा हुआ है। लेकिन श्री भगवान का कुछ भी प्राकृत नहीं है, सब चिन्मय है, दिव्य है। कुंती महारानी कहते हैं क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं और सब लोग प्रकृति के अधीन है, प्रकृति ने जन्म दिया है, किसी शहर में, गांव में कोई भी जीव माता पिता बन जाता है, कोई ठीक नहीं है। आज मनुष्य शरीर मिला है, अगले जन्म में हो सकता है कुत्ता बाप बन जाए, कोई ठीक नहीं है। विविध जोनियां मिलती रहती हैं, इस जोनी से उस जोनी में, तो ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति जन्म देती है, प्रकृति मार देती है, प्रकृति खाने को देती है और पहनने को देती है, सब कुछ प्राकृत है। ये दुकानों में भरा हुआ सामान कहीं कोई वैकुंठ का नहीं आया है, सब प्रकृति का है, यहाँ का है। लेकिन श्री भगवान का जो धाम है और उनका जो श्री विग्रह शरीर है, उनके परिकर आदि जो कुछ है, सब वैकुंठ जगत के, इसलिए उनको प्रकृति है परम, प्रकृति से अतीत कहते हैं, प्रकृति से परे। और परम का अर्थ ये भी होता है नियंता, कंट्रोलर, प्रकृति के कंट्रोलर है और समस्त जीवों के ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, नियंता का अर्थ है बस में रखने वाला, सारा चर अचर जगत और जो कुछ भी है, स्वर्ग पाताल आदि सब श्री कृष्ण के अधीन है, श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। कुंती महारानी इस रहस्य का उद्घाटन कर रही है।